ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत भाग्यवान हैं। मुरली में सभी ने सुन लिया, मधुबन निवासी तो बहुत भाग्यवान है। अब सब आप मधुबन में हैं। यहाँ के गेट में प्रवेश होते ही भाग्य चमकने लगता है, खुशी आ जाती है चेहरों पर। हम सबकी प्रभु पालना हो रही है। सबसे अच्छी पालना कौन सी लगती है राजेश भाई? ज्ञान और योग की पालना तो है ही। ज्ञान में सवेरे की मुरली, योग सारा दिन भी है हमारा, पर सवेरे का प्रभु मिलन अति सुंदर। ये पालना है, यही तो संसार में किसी को नहीं मिलती। आप संसार में कहीं भी चले जाओ, अच्छे गुरुओं के पास भी रोज सवेरे इस तरह सुंदर बातें सुनने को मिलती हो, वो भी भगवान के महावाक्य। क्यों सुरेश भाई, अब तो अभी खुश हो गए हैं? सुरेश भाई बहुत खुश रहते हैं, अच्छी स्थिति में। बड़ा भाग्य है, प्रिय है रोज की मुरली, प्रिय है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं, पहले एक दो चीज याद दिलाते हैं मुरली की, फिर चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा तुम मुझे अपना वारिस बना दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, लाल बना दूंगा। किस किस को पसंद आई ये बात, सोच लो अच्छी तरह। वारिस बना दो, भक्ति में भी गीत गाए हम तुम्हारे तुम हमारे। मुरलियों में बहुत आता है सब कुछ समर्पित कर दो। इसके अर्थ को कई लोग समझते नहीं, और कई ग्रस्त में रहने वाले तो तुरंत सोचते हैं अपने बस का तो ये काम है नहीं, बच्चे हैं, परिवार है, कैसे सब कुछ समर्पित कर दें। कौन कौन सोचते हैं ऐसा? हाथ तो नहीं उठाएंगे कोई, पर सोचते हैं, सोचते तो हैं। समर्पणता के गुह्य रहस्य को समझना है। केवल छोड़ के हम यहाँ आ जाएं वही समर्पणता नहीं। मैं और मेरा पंजरा भी न रहे, ये है संपूर्ण समर्पणता, चाहे आप ग्रस्त में रहें या यहाँ रहें। मैं और मेरेपन का संपूर्ण त्याग, सब कुछ तुम्हारा, मेरे सहित मेरे कार्य मेरी जिम्मेदारी सब तुम्हारी, बच्चे भी परिवार भी। बहुत अच्छा चिंतन इस पे सभी किया करें, और इससे हमें ही फायदे हैं। बाबा को थोड़ा इससे कोई लेना देना है कि वो कहे अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। हम सोचते हैं पता नहीं बाबा क्या करेगा, अब उसको हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए उससे सब कुछ। हमें सब कुछ देने के लिए वे ये विधि बताते हैं। दूसरी सुंदर बात, बहुत सुंदर, आप सबको याद रही होगी, याद रखना है सबको। बाप प्यार से बाबा कहो, बोलो आगे किसको याद है। बाबा हजार भुजाओं सहित साथ है, प्यार से बुलाओ तुरंत हाजिर, ये शब्द बाबा के। और अगला शब्द जो हम तो नहीं बोलते पर बाबा बोलता है, बाप तो तुम्हारा ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। साकार मुरलियों में तो ओबीडियंट सर्वेंट कह देता है, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाबा कितना निरंकारी है कि अपने बच्चों के सामने अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कह देता है, लेकिन बाबा ओबीडियंट है और हमें भी सिखाता है तुम भी ओबीडियंट बन जाओ। हम इसका फायदा उठाएं, ये बहुत सुंदर पालना है। प्यार से बाबा कहो, बाबा हजार भुजाओं सहित हाजिर है। इसके सबको अनुभव करने हैं। ये केवल महावाक्य न रह जाए, ये हमारा अनुभव बन जाए, रोज दो चार बार इसका अनुभव कर लेना चाहिए। भिन्न भिन्न रूप से आपको कोई बीमारी कष्ट दे रही है, कैसे बाबा कहेंगे, कैसे बुलाएंगे उसको, हैं? सुप्रीम सर्जन आ जाओ, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, मुझे बहुत होते हैं। शरीर में कोई ना कुछ होता रहता है बिना मतलब का, बिना मतलब का। कल भी मुझे यहाँ क्लास करानी थी ऊपर, अब मेरी कमर में ऊपर बहुत दर्द हो गया। मैंने बाबा कहा सुप्रीम सर्जन, जस्ट आने से 5-7 मिनट पहले, सुप्रीम सर्जन अब कुछ करो, ये मुझे खींचता रहेगा वहां, मैं क्लास तो करा लूंगा पर खींचता तो रहेगा ना। और फट से हुआ। मुझे एक एक्सरसाइज ख्याल आई, मैंने 2 मिनट की और मैं ठीक हो गया। इतने अच्छे अनुभव रहते हैं, कहीं भी कठिनाई आए बाबा 1000 भुजाओं सहित आ जाओ। लेकिन बहुत प्यार होना चाहिए, बहुत अपनापन होना चाहिए, बहुत भावना होनी चाहिए उसमें, ये इम्पोर्टेंट चीज है। केवल ज्ञान नहीं कि बाबा ने कहा चलो बुला के देख लेते हैं आता भी है या नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल संपूर्ण विश्वास वो हमारा है, हमारे लिए है, सदा हमें मदद करने के लिए तैयार है। जैसे आप सभी माँ बाप अपने बच्चों को सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं ना। माताएं सोचें, आपको 102 बुखार है, आप बिल्कुल लेटी हुई हैं, आप चाहते हैं कोई चाय भी मुझे बना के पिला दे, लेकिन आपका एक छोटा बच्चा है 10 साल का, स्कूल से आया है, कह रहा मम्मी बहुत भूख लगी है, रहा नहीं जा रहा है, क्या करेंगी? कहेंगी मुझे बुखार है, भूखे रहो अब, क्या करेंगी? एनर्जी आ जाएगी ना, उठेंगी, कुछ भी बना के उसे खिलाएंगी। सब भूल जाता है ना इस प्यार में। बाबा भी इससे बहुत ज्यादा प्यार अपने बच्चों को करता है, हम उसके प्यार को महसूस करें। उसका प्यार ये नहीं वो हमें पुचकार दे केवल, उसका प्यार है समय पे बहुत ज्यादा मदद करना। वे अपने बच्चों को जरा भी परेशानियों में देखना ही नहीं चाहते, हम जरा उनके पास पहुंचे, उनसे कनेक्ट हो जाए, उनसे जोड़े अपने को, उनका आह्वान करें तो हर चीज को हल कर देते हैं बाबा। तो सभी इसको अपनी नेचर बनाएंगे, समस्याएं हो जाएं, देखो आदत बनाएं, कोई बीमारी भी हो जाए ना, पहले डॉक्टर दवाई को याद ना करें, दवाई ले लें चल के कुछ, पहला नाता ऊपर जोड़ दें, उसकी मदद लें। कोई और समस्या आ गई उसको बुलाएं, ये अपनी आदत बनाएंगे, 2-4-5 बार रोज करेंगे, ये नेचर बन जाएगी और ये आने वाले विकराल समय में हमें बहुत मदद करेगी। जब परिस्थितियों में संसार उलझता जाएगा, बस बाबा कहेंगे, बाबा हाजिर हो जाएगा। मुझे याद रहती है बात, बहुत बहुत साल पहले जब विनाश की बात चलती थी तो निर्वैर भाई ने बाबा से पूछा कि बाबा विनाश काल में आप कैसे मदद करेंगे। मुझे याद रहती है वो बात, कमरे में बाबा आए थे अपने मधुबन में, बाबा ने उत्तर दिया ऐसा होगा कि बच्चे कहेंगे बाबा और अपने चारों ओर बाबा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। बाबा आ गया और बाबा के आते ही भय समाप्त हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, प्रकृति सहयोगी बन जाएगी, बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। पसंद है बाबा को बुलाना या अपनों को ही बुलाएंगे? याद रहेगा परिस्थितियों में, चोर आ गए आपके घर में, आएंगे बहुत बहुत आएंगे। अब चोरों को देखकर उनके हाथ में बंदूक है या चाकू है, तलवार लिए हुए हैं, हमें ऐसी आदत डालनी है कि हम विचलित न हो जाएं, घबरा न जाएं, भागदौड़ न करने लगे, ऊपर चला जाए बुद्धि एकदम से, एक सेकंड में आ जाओ और देखो चोर चोर भागेंगे। अब हमें भागने की जरूरत नहीं, चोर भागेंगे। सुनिए बाबा की मुरलियां, तुमसे किसी को महाकाली दिखाई देगी और भयभीत हो जाएंगे। तुमसे किसी को दुर्गा देवी दिखाई देगी, भयभीत हो जाएंगे। लेकिन हमें उससे अपने को कनेक्ट करना है। अब सबसे सुंदर बात पर आ जाएं, ये भी सुंदर है, पर एक और सुंदर बात जो संडे की मुरली में थी, स्वदर्शन चक्र। इसका अर्थ है, रोज तो हम सुनते हैं, आज भी था, जो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे वही चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम सब ये सोचते हैं हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, पर इसकी डीप नॉलेज बाबा ने संडे को मुरली में दी। पूरे चक्र में मैं क्या क्या हूं ये जान लेना स्वदर्शन चक्र है। एक हो गया हमें ज्ञान कि हम देवता थे, ऐसे ऐसे नीचे उतरे हैं सतयुग से, वो पहली बात है, जनरल बात है। लेकिन सतयुग में मैं क्या हूं, किताबें निकलती है ना हमारे देश में भी, कौन क्या है, सब वीआईपी का परिचय होता है उसमें। हम क्या थे, क्या क्या हमारे पाठ चले हैं पूरे कल्प में, याद दिला दें आपको, ब्रह्मा बाबा के साथ हर जन्म में प्रीत की रीत निभाने वाले हो। चलो सब नहीं तो, पर किसी को देखकर बाबा ये कह रहे थे। ब्रह्मा बाबा सृष्टि की पहले नंबर की आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण, उसके साथ जन्म जन्म हमने पाठ बजाए। इसका अर्थ ये नहीं जो यहां उनके साथ रहे वो वहां उनके साथ रहेंगे, ऐसी मोटी बात नहीं है। मुरलियां आपने सुनी होंगी, जिनके संस्कार बाबा जैसे होंगे वो साथ रहेंगे, जिनकी स्थिति बाबा के साथ समान होगी वो साथ रहेंगे, जो पढ़ाई में उनके समान होंगे वो साथ पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। जिन्होंने शिव बाबा को निरंतर अपने दिल में बसाया है, भक्ति मार्ग में भक्त भी उन्हें निरंतर अपने दिल में बसाया करेंगे। बाकी किसी की पूजा हफ्ते में एक बार, किसी की मास में एक बार, किसी की साल में एक बार हुआ करेगी। जैसी जैसी यहाँ स्थिति वैसी वैसी भक्ति काल में भी हमारी स्थिति चलती रहेगी। अब जो गुह्य रहस्य है वो ये है, याद करें बाबा ने कहा, संगम युग पर जिनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी वही पूरा कल्प हीरो एक्टर बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं याद दिलाता हूं कुछ पार्ट आपको जिन्हें आप जानते हैं। महाराष्ट्र से कौन कौन बैठे हैं यहाँ, बहुत सारे बैठे हैं। संत ज्ञानेश्वर को हीरो एक्टर कहेंगे ना, कहेंगे ना, भक्ति की एक लहर फैला दी उस समय में, 700 साल हुए शायद अब तक, भक्ति की एक लहर फैला दी, मनुष्य को एक सिंपल ज्ञान दे दिया गीता का मराठी में, दूसरे ढंग से ट्रांसलेशन कर दिया सब लोग उसको पढ़ सके, हीरो एक्टर वो हो गए। महाराणा प्रताप को हीरो एक्टर कहेंगे इतिहास का, देखिए छोटा सा मेवाड़ राज्य भारत के सम्राट से बादशाह से टकराने लगा, उसको पता था हम नष्ट हो सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, बहुत कुछ करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, कष्ट सहे, जंगलों में रहे, त्याग बलिदान किया, परिवार को भी कष्टों में डाला। वो चाहता तो समझौता करता, राजाओं की तरह से हिंसा की तरह रहता, लेकिन नहीं, वो हीरो एक्टर थे ना। शिवाजी को याद करें, हीरो एक्टर थे ना, और भी कई सारे लोग इस सृष्टि में, इतिहास में हीरो एक्टर, धर्म के क्षेत्र में हीरो एक्टर। बहुतों ने इतिहास पढ़ा नहीं और जिन्होंने पढ़ा भी है उनको उन चीजों का ज्ञान नहीं है। भारत पर कई बार द्वापर युग में भी विदेशियों का राज्य हो गया। किसी एक एक बहादुर ने, जो राजकुमार था, छोटी सी सेना से उन विदेशियों को भारत से निकाल दिया, वो थे सब हीरो एक्टर। समझ गए ना हीरो एक्टर। फिर फिल्मों वाले नहीं, वर्ल्ड की फिल्म में। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके साथ उस समय भी ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही थी, ये बिल्कुल सत्य है। मैं एक वीर की कहानी पढ़ रहा था, छोटी सी नाटक की कहानी थी, वीर सेन, जानते नहीं है कोई उसे भारत वाले। भारत पर कुषाणों का अधिकार हो गया, गंगा नदी तक और इधर सारा सारा हिस्सा इधर का कुषाणों के हाथ में चला गया। गंगा के उस पार हिंदू राज्य रह गया, कुछ 50-60 साल चला वो। जो भारत का उस समय बादशाह था उसका पोतरा था वीरसेन, उसने युद्ध किया था उस कुषाण सेनापति से और शर्त यह हुई थी कि दोनों केवल द्वंद्व युद्ध करेंगे, दोनों का युद्ध होगा बाकी किसी का नहीं, सेनाएं नहीं लड़ेंगी, हम दो लड़ेंगे, जो हार गया वो गया, दूसरे को राज मिलेगा, ये शर्त लग गई। तो बहुत अच्छी घटना उसमें दिखाई गई कि मंदिर का जो पुजारी था उसने देवी की तलवार उसको दे दी कि जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा। युद्ध हो रहा था दोनों का, जब उन्होंने देखा कि हमारा सेनापति हार रहा है कुषाणों ने, तो सात ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, सात बहुत जो अच्छे उनके जनरल थे। और आप हैरान होंगे, उसने एक वो तलवार जो उसके हाथ में थी उससे सातों को मार के फिर उसे मार दिया और भारत स्वतंत्र हो गया। तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ी, मैंने देखा कि बाबा की भी नजर भारत पे लगी रही द्वापर युग से। स्वीकार है आपको, ये सत्य है। हमने बाबा के महावाक्यों में सुना है, भारत मेरी जन्मभूमि है, मुझे भी इससे बहुत प्यार है, बाबा रक्षा करता आया है जन्म जन्म। कुछ हम लोगों की गलती हो गई, नीचे वालों की गलती हो गई, तो बाबा की जो मदद थी उसको लोग ग्रहण नहीं कर पाए, कुछ विकारों के वश हो गए, कुछ स्वार्थ के वश हो गए, वासनाओं में चले गए, शराबी बन गए राजाएं, ईर्ष्या द्वेष में कमजोर हो गए। लेकिन ईश्वरीय मदद समय समय पर मिलती रही। आप कहेंगे ना स्वामी विवेकानंद हीरो एक्टर थे धर्म के फील्ड में, शंकराचार्य भी हीरो एक्टर थे, तो ये आत्माएं यही कहीं ना कहीं श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करती हैं। तो इस मुरली का ये महावाक्य बहुत सुंदर है, अपनी जिसकी स्थिति श्रेष्ठ होगी वही हीरो पार्ट बजाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हैं? सर्वशक्तिवान से सारी शक्तियां स्वयं में भर लेना। एक चीज, आत्मा को बिल्कुल निर्मल निश्चल निर्विकारी बना देना, प्योरिटी का बल सबसे बड़ी चीज। योग बल से प्योरिटी का बल आता है, ये प्योरिटी बहुत बड़ा बल है। द्वापर युग से भी जिनके पास ये बल रहेगा वो विजयी रहेंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे धर्म के क्षेत्र में भी। अपने अंदर बहुत सारे गुणों को धारण कर लेना, जैसे निरहंकारिता जिस पर बाबा बहुत ध्यान देते हैं, निष्काम भाव, सेवा की समर्पित कर दिया, मैंने किया ये कुछ नहीं, जो यहां मैंपन का त्याग कर देंगे तो द्वापर युग से भी बाबा उन्हें यूज कर लेगा। और जब मनुष्य के अंदर मैंपन रहता है तो सर्वशक्तिवान भी उसे यूज नहीं कर पाता, क्योंकि मैंपन की दीवार हमारे ऊपर खड़ी हो जाती है। जिन्होंने मैंपन का त्याग कर दिया उनकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। जो सरल चित्त हो गए, जिनकी भावनाएं श्रेष्ठ हो गई, जिन्होंने आत्मिक प्रेम सबके लिए रख लिया, ये श्रेष्ठ स्थिति है। और जो उलझनों में रह गए, जो ईर्ष्या द्वेष वैर भाव में रह गए, जिनकी भावनाएं निगेटिव रह गई, उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। पवित्रता होने के बाद भी उनके पास पवित्रता का बल नहीं रहता है। तो जरा सा विचार करेंगे, हम सभी अपने सभी जन्मों को जान लें, जान सकते हैं और जानना चाहेंगे। मेरे साथ अर्जुन जानना चाहेंगे भी और जान भी सकते हैं। एक बहुत सुंदर महावाक्य था बाबा का, अंत में जब तुम्हें ये पता चल जाएगा मैं कौन हूं, तब तुम्हें इतना नशा चढ़ जाएगा कि संसार में जो कुछ हो रहा होगा नीचे उसके भी तुम्हें अविद्या रहेगी, संसार का मां विनाश हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहां कहां क्या हो गया, और तुम्हारे वाइब्रेशन सबको सहारा देते रहेंगे। याद होगी आपको मुरली, शुरुआत भी इससे हुई मैं कौन हूं और अंत भी इससे ही होगा मैं कौन हूं। बहुत महापुरुषों की कहानी है। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, जब वो स्वामी दयानंद नहीं थे, सत्य की खोज में घूम रहे थे, उन गुरु थे स्वामी विरजानंद, वो नेत्रहीन थे, उनकी कुटिया में पहुंचे बाहर, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने अंदर से आवाज दी कौन हो, इसने उत्तर दिया यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। समझ गए स्वामी जी के कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आ गया है, दरवाजा तुरंत खोला, अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, फिर आगे की कहानी। हम सब की भी शुरुआत यहां से हुई मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और एंड होगा, जोड़ो इसमें एक एडजेक्टिव, मैं कौन सी आत्मा हूं, इस सृष्टि चक्र में मेरा क्या रोल है, क्यों है, वो सब हमें पता चल जाएगा। अब ये पता चलने के लिए हमें स्वदर्शन चक्रधारी होना पड़ेगा। दो चीजें परसों की मुरली से, अपने आदि और अंत के जन्म के महत्व को जानते हो, याद है संडे की मुरली, आदि का जन्म सतयुग में जब हम उतरे थे पहले पहले, अंत का जन्म जब फिर से वहीं आ गए हैं जहां से चले थे, दोनों का महत्व जानना। क्यों जरूरी है ये सब चीज जानना? जो मनुष्य अपने जीवन को बहुत वैल्यू देता है, विचार करेंगे आप, क्या हम अपने जीवन को वैल्यू दे रहे हैं? एक विद्यार्थी है, अपने विद्यार्थी काल को वैल्यू देता है, पूरा जीवन सुखी रहता है। दूसरा विद्यार्थी है, बुरे संग में इधर उधर टाइम वेस्ट करता है, पूरा जीवन पश्चाताप करता है कि वो समय जब हमें पढ़ना था तब तो हम पढ़े नहीं, अब उसका जब फल मिल रहा है अब कष्ट पश्चाताप। जो मनुष्य अपने जीवन को वैल्यू देता है उसका जीवन बहुत वैल्यूबल बन जाता है। जीवन में दो चीजें, संकल्प और समय। इसलिए बाबा ने बहुत हम सबको सिखाया, तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट वर्ष के समान है। याद रहता है क्या? ये याद रहना चाहिए। तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है। एक एक संकल्प से ही तो काम होता है। एक व्यक्ति को कभी संकल्प आया था चांद की खोज की जाए, पहुंच गए? एक व्यक्ति में संकल्प का बीज ही तो पड़ा था कि मंगल ग्रह तक पहुंचना है, पहुंच गए? एक संकल्प ही तो है ना किसी मनुष्य को बहुत महान बना दे या किसी मनुष्य को बिल्कुल डाउन कर दे। हम अपने संकल्पों को वैल्यू दें तो जीवन को महत्व देना, इससे हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और उस तरफ नहीं जाएंगे जिधर हमें कुछ नहीं मिलना है, टाइम वेस्ट हो रहा है, संकल्प वेस्ट हो रहे हैं। हम उन बातों में नहीं जाएंगे जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, जो हमारा लक्ष्य नहीं है, इससे हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। और अब हम सुख संवाद पर चलेंगे, सतयुग से और अब तक का। जो कुछ हमने पार्ट प्ले किया है आत्मा में रिकॉर्ड हो गया। देखो बाबा इसके बारे में भिन्न भिन्न बातें बोलते हैं, उनको गहराई से समझना हमारे ऊपर है। जो तुम पार्ट बजाते आए वो रिकॉर्ड होता रहा है, वो फिर रिपीट होगा। ऐसा एक चित्र बना ले, विजन बना ले कि जब हम सतयुग में थे बिल्कुल आत्मा फ्रेश, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हमने पार्ट प्ले करना शुरू किया, रिकॉर्ड होने लगा, अंत तक सब रिकॉर्ड हो गया। जो आत्मा में रिकॉर्ड है बहुत ध्यान देंगे और चिंतन करेंगे, जो कुछ आत्मा में रिकॉर्ड है, नोंद है, वो हमारे ब्रेन में भी अंकित है। उसके बहुत सारे चिन्ह हमारे शरीर पर भी रहते हैं, ब्रेन में वो सब अंकित है। इधर ब्रेन बहुत बड़ा है ना, देखो थोड़ी सी चिप्स में भी कितना माल भर जाता है। हार्ड डिस्क ले लेते हैं, छोटी सी इतनी सी, कितना माल भर जाता है उसमें। और ये तो बहुत बड़ा हो गया और उन सब से बहुत सूक्ष्म है। 84 जन्मों का सब कुछ, या जिसने जितने जन्म लिए उसका सब कुछ ब्रेन में भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में अंकित है, प्रिंट है। सुंदर लेयर, फिर द्वापर से खराब लेयर, सतयुग त्रेता के प्रिंट्स, द्वापर कलयुग के चिन्ह सब ब्रेन में हैं। अगर हम इस नशे में रहते हैं, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, अपना देव स्वरूप, आदि स्वरूप, पहले जन्म का स्वरूप हमारे सामने रहने लगे, उसका हमें नशा चढ़ जाए, तो हमारे ब्रेन में जो वो देवत्व है छपा हुआ है, जो देव कुल का सब रिकॉर्ड है, वो जागृत हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा को देखो, भविष्य का नशा जितना ब्रह्मा बाबा को था उतना उसके बाद किसी को नहीं रहा। स्वीकार है ये सत्य? आप में से बहुतों को पता नहीं, बाबा को तो बहुत नशा था, मैं ये शरीर छोड़कर ये बनने वाला हूँ। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ सुंदर, दादी जान की सुनाई। दिन के 3 बजे सब सो जाते हैं, हमारे यहाँ सब रेस्ट में चल जाते हैं, 2 बजे से कभी जल्दी उठते हैं। तो वो दादी जान की भी बहुत बड़ी तपस्वी, बहुत बड़ी, आप उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सबसे ज्यादा सादगी भरा जीवन, सबसे ज्यादा त्याग भरा जीवन और बहुत गहरी तपस्या, बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं, व्यर्थ तेरा मेरा सब खत्म। तो वो भी योग करने चल जाती थी, रोज़ 3 बजे उसने सोचा मैं अब अपने कमरे में चलूं। कमरा था हिस्ट्री हॉल के पीछे। दादी धीरे धीरे जो हिस्ट्री हॉल के साइड से जा रही थी, पैसेज है आपने देखा ही है, क्या देखा अंदर, ब्रह्मा बाबा अकेले ही डांस कर रहे हैं, 90 साल का बूढ़ा हो गया ना, डांस कर रहा है। दादी छुप के देखने लगी, सोचा मैं देखूंगी तो पूरा हो जाएगा डांस। बाबा ने देख लिया, कहा आओ बच्ची, पूरा हो गया हो। तब ये ट्रांसलाइट देखा होगा हिस्ट्री हॉल में साइड में जो लगा हुआ है लक्ष्मी नारायण का, वो बन के आया था मुंबई से, और बाबा को बहुत नशा था ये मैं बनने वाला हूं। दीदी मनमोहिनी बहुत सुनाया करती थी शुरू में। दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ रही है मामा के जाने के बाद, 65 से दिल्ली से बाबा ने मनमोहिनी दीदी को यज्ञ में बुला लिया था, क्योंकि यहाँ भी सारा काम करना होता था, संभालना होता था। तो दीदी बताती, मैं अचानक कभी बाबा के रूम में चली गई तो बाबा की जो गद्दी है ना, बाबा घुटनों के बल चल रहा है गद्दी पर, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना। अब देख लिया दीदी ने, बाबा हाँ अब दीदी बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर छोटा श्रीकृष्ण बनूंगा। और चेहरे पर वही एक्सप्रेशन, वही हाव भाव, छोटा बच्चा श्रीकृष्ण जैसी रौनक। तो हम भविष्य के नशे में जब जाते हैं तो वो संस्कार वर्तमान में जागृत हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सब ब्रेन में प्रिंट हैं, आत्मा में प्रिंट हैं, ब्रेन में भी प्रिंट हैं। इसलिए जितना हमें अपने भविष्य का नशा होगा और वो स्वरूप हमारे सामने आता जाएगा, हमें अपने अनेक जन्मों की, देवकुल के जन्मों की याद आने लगेगी, वो हमारे सामने प्रकट होने लगेगा। ये बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने अनेक जन्मों को स्पष्ट जान लिया था, देख भी लिया था। शिव बाबा ने उन्हें तो साक्षात्कार भी करा दिए, लेकिन अपने ज्ञान और योग के बल से उन्होंने अपने अनेक हीरो पार्ट को देख लिया था। बाबा कहीं कहीं इशारों में ये बात करते थे, मैं कभी पगड़ी वाला होऊंगा, कभी ताज वाला होऊंगा। कलयुग में राजाओं को पगड़ी होती थी ना सुंदर, बाबा बोलते थे कभी कभी। तो हम ध्यान दें, सब कुछ इधर ब्रेन में प्रिंट है, अगर हमें उसे देखना है, अगर हमें उसे जानना है, आपकी कंप्यूटर में सब कुछ भरा हो, आपको उसे निकालना है तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना। लेकिन ब्रेन में सब कुछ प्रिंट है, उसे जागृत करने के लिए, उसे सामने देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। बुद्धि को क्लीन कर दो, सुना है ना बाबा का मावक, बुद्धि को स्वच्छ कर दो। ये जो गंदगी है, इसकी लेयर उन अच्छी चीजों को जागृत नहीं होने देती। किसी फिल्म के ऊपर धूल जम गई हो तो दिखेगा क्या? तो धूल अगर हमने अपनी बुद्धि में बहुत डाली हुई है तो वो जो हमारे सुंदर पार्ट हैं, उनका हमें रियलाइजेशन कभी नहीं होगा। बुद्धि को क्लीन करना, और दूसरा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना। ये भी स्वमान है, मैं इस सृष्टि चक्र की हीरो एक्टर हूं, मैंने बड़े बड़े पार्ट बजाए हैं, अब भी मुझे बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना है। तो हमारे अनेक जन्म हमारे सामने आने लगेंगे, हमें उन्हें लाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली होगा। जब हम योगयुक्त होंगे, योगियों को बहुत अच्छी इंट्यूशंस प्राप्त हो जाती हैं, अंत प्रेरणाएं कहते हैं हिंदी में, वो हमें प्राप्त होने लगेंगी और हमारा कोई भी स्वरूप हमें दिखाई देने लगेगा जब योगयुक्त होगा। और तब ये काम बहुत चलेगा जब बाबा साक्षात्कार का पाठ शुरू कर देगा। हमारे क्या क्या रोल थे वो दूसरों को दिखाई देने लगेंगे हमारे चेहरे से, पर वो तभी होगा जब हम लंबा काल स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहे होंगे। तो हम अपने पहले जन्म के महत्व को भी समझें, संपूर्ण पवित्र चमकते हुए हमारे ललाट होंगे, तेजस्वी आत्मा पहले जन्म में, सर्व गुणों की खुशबू फैलती होगी, प्रकृति अधीन होगी, सब कुछ स्वतः ही प्रदान करेगी, संसार भरपूर होगा। बाबा क्या करते हैं, हीरे ऐसे ही बिखरे पड़े होंगे जैसे यहाँ पत्थर पड़े होते हैं, सब माल धरती के गर्भ में है, बहुत सारा माल सागर के तले में है, वो सब एक झटके में भारत की भूमि पर आ जाएगा। बहुत सारे हीरे ऊपर घूम रहे हैं आकाश में, कई ग्रह हीरो के हैं, सब धरती पर आ जाएंगे भारत में। तो हमारा पहला जन्म भौतिक रूप से भी बहुत संपन्न और स्पिरिचुअली भी बहुत संपन्न, परफेक्ट डिवाइन एकदम, उसे हम देखा करें, ये मैं हूं, अपने सामने लाएं, ये मैं हूं, अभी ले आओ जरा, ये मैं हूं, बहुत डिवाइन रूप हमारा। उस रूप की इस समय तो संसार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। संगम युग का ये जीवन, इसके महत्व को भी हमें जानना है। हर पल जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाया जा सकता है, ठीक बात है या नहीं? ठीक बात है। जितने चाहे गुणों से स्वयं का श्रृंगार किया जा सकता है, गुण हमारी बहुत बड़ी निधि है, खजाना है बहुत बड़ा। गुणवान व्यक्ति का जीवन कितना सुंदर होता है, और विकारों के वश किसी व्यक्ति का जीवन कितना कष्ट देने वाला भी कष्ट पाने वाला भी होता है। एक व्यक्ति आया इसी ग्रुप में, कहा भाई मेरी पत्नी इतना गुस्सा करती है कि अब हम भी उससे डरने लगे हैं। आज ही था कोई, सच्ची बात है। कहा मेरी माँ 77 years old, वो कहती है इसको अलग कर दो बिल्कुल। मां बेचारी चुप रहती है, बाप नहीं है। तो उस पर उसके शब्दों का इफेक्ट आ रहा है, ये भाई बहुत अच्छा अच्छी पर्सनैलिटी वाला साहूकार। कहा उसके शब्द सुन सुन के मुझे भी डर लगने लगा है, मेरे अंदर भय पैदा होने लगा। इतनी अग्रेसिव हो जाती है कि हम सब चुप हो के, बच्चे भी जैसे दुबक जाते हैं बिल्ली को देख के चूहों का जैसे हाल होता है। मेरे पास आया था, क्या करें भाई, उसको बदला जा सकता है क्या? एक साल से ये ज्ञान में, कहा दो मास से वो भी आ रही है। अब धीरे धीरे मैंने कहा आ रही है तो बस हो जाएगा कल्याण। तो देखिए, एक व्यक्ति का क्रोध, उसके कटु वचन पूरे परिवार पर कितना बुरा असर डाल देते हैं। अब वो सुखी होगी क्या? खुद उसको भी सुख नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वो बहुत कष्ट में रहता है, वो रोता है। फिर कहा उसको नींद आना बंद हो गया रात को। उसने सुनाया एक नई समस्या, माँ के साथ समस्या थी, बच्चे दोनों बाहर पढ़ने चले गए, बड़े हो गए हैं, मेरे साथ समस्या हो गई, मैं मुझे डर लगने लगा है, और अब उसके साथ भी समस्या हो गई कि उसको रात को नींद नहीं आती है। देखो, एक व्यक्ति का क्रोध कैसा जहर घोल देता है परिवारों में। बचेंगे हम इन सब चीजों से तो संगम युग पर बाबा ने हमें कितना सुंदर जीवन प्रदान किया है, इसको हम वैल्यू दें। सुख शांति से भरा जीवन, आनंद प्रेम से भरा हुआ जीवन, सफलता की राहों पर चलता हुआ हमारा जीवन, प्रभु प्रेम में उसकी पालना में पलता हुआ हमारा जीवन, महत्व दें इसको। ले लें जो चाहे, हमारे पास एक गीत है ना, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। महमूद गजनवी ने तो उसका मंदिर लूटा, पर हम तो उसको ही लूट रहे हैं। ठीक है, जो चाहे ले लो उससे, जो चाहे ले लें, ऐसा सुंदर समय है, उससे संपूर्ण शांति का अनुभव कर लें। ऐसी शांति जो द्वापर युग से भी हमारे साथ रहेगी, उससे संपूर्ण शक्तियां भर लें जो द्वापर युग के बाद भी हमारे काम आती रहें, उसका प्यार पाकर अपने अंदर इतना प्यार भर लें कि 84 जन्म हम प्यार के दाता बन जाएं, ये सब अब हो रहा है। उसे इतना ज्ञान लेकर अपने चित्त को प्रकाशमय कर दें कि द्वापर युग के बाद भी अंधकार का अनुभव न हो, जल्दी जल्दी ज्ञान का प्रकाश मिलता रहे। हमें सत्य राह मिल गई है, ठिकाना मिल गया है। मिल गया है या नहीं भाइयों को? मिल गया, ठिकाना मिल गया। जब ठिकाना मिल जाता है, चित्त शांत हो जाता है। भटका हुआ व्यक्ति अपने घर में पहुंच जाए रात को 12-1 बजे, जो भी भटकन हुई पूरी हो जाती है, शांत हो जाता है मन। पहुंच गए हम भी वहां, पहुंच गए जिसकी हमें जन्म जन्म से तलाश थी। अब इस चित्त को शांत करना हमारा परम कर्तव्य है। तो अपने जीवन को महत्व दें और सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। सभी आप यहाँ आए हैं, ये चिंतन की बात लास्ट में आपको कर रहा हूँ, साथ ले जाना। इस संगम युग पर हम और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं? राह मिल गई है, ठिकाना मिल गया है, मार्ग मिल गया है, मंजिल भी दिखा दी गई है। अब हमारे कदमों को हम कैसे रफ्तार दें ताकि अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं? कुछ भी खोजना, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो गया ज्ञान सागर से, और ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ होना चाहिए, हमारा मन का भटकना खत्म। भटकते तो वो है ना जिन्हें राह का पता नहीं, जिन्हें मंजिल नहीं दिखती, जिनके पास अंधकार होता है। हमारी भटकन समाप्ति है, हमारा स्वरूप हो जाना चाहिए। तो चिंतन करेंगे और अच्छे से अच्छा, इस जीवन में क्या किया जा सकता है। सभी बुद्धिमान भाई बहने दिख रहे हैं मुझे, सेवा में आए हैं। बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन को कहीं उलझाए नहीं, जो सभी उलझनों को, सभी जो जाल है उन्हें काट दे, यही तो सद्विवेक है। कोई भाई मेरे पास आया बैठा है, यहाँ पंडित है, कर्मकांड करता है लौकिक में, पहले मेरे से पूछा था करूं या छोड़ दूं, मैंने कहा नहीं चालू रखो, सभी छोड़ देंगे कर्मकांड करना तो लोगों का क्या होगा। पूछ रहा था मेरी स्थिति ऐसी हो रही है, निष्काम भाव पैदा होता जा रहा है। बहुत सुंदर बात कही उसने, इसको मैं चालू रखूं या छोड़ दूं, छोड़ देना चाहिए चालू रखना चाहिए, चालू रखो, ये बहुत सुंदर स्थिति है निष्काम भाव पैदा हो जाना। सांसारिक भाव, धन कमाने का भाव, बहुत धन इकट्ठा करने का भाव, ये तो कलयुगी लौकिक भाव है, इनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। सब देख चुके हैं, देखते रहेंगे, न धन काम आएगा न जन काम आएंगे, काम आएगी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बाबा, हमारे पुण्य कर्म, हमारी प्योरिटी, हमारे द्वारा बाबा के कार्यों में दिया गया सहयोग। तो बहुत अच्छा चिंतन लेकर जाएंगे सभी भाई बहने, अच्छे से अच्छा कर लेना है, अपने संगम योगी जीवन को पूर्ण सफल कर देना है, ताकि जब हम इस संसार से विदाई लें तो गीत गाते हुए जाएं। मैं एक बात कहा करता हूँ, सो भी मुस्कुराते हुए, जगो भी हंसते हुए। अब इसको विशाल रूप से देख लें, जब हम इस संसार में आएंगे कैसे आएंगे, आनंदित, और जब अब जाएं भरपूर और आनंदित होकर जाएं। ओम शांति।
कर सोच विचार।